जय माँ। योग समन्वय भाग दो, पूर्ण ज्ञान का योग, द योग ऑफ इंटीग्रल नॉलेज, 16वां चैप्टर, 16वां अध्याय। और इसका एक बड़ा सुंदर एक शब्द का टाइटल है वननेस। वननेस शब्द वन से निकला है और एक और एकत्व। तो अगर हम सीक्वेंस देखेंगे सारे ये वास्तव में रियलाइजेशंस के सीक्वेंस हैं जो शेरविन ने जिस सीक्वेंस में इसमें दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि पहले शेरविन रिलीज, अलग अलग हमारे चेतना के जो गांठे हैं उनको खोलना, बड़ा सुंदर है योगा ऑफ इंटीग्रल नॉलेज सब जगह ये सीक्वेंस है एक। तो पहले वो हमें बता करके कि ज्ञान क्या है और अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसके मुख्य आधार कंसंट्रेशन और रिनन्सिएशन, फिर ज्ञान के जो अलग अलग ज्ञान मार्ग के अलग अलग पथ हैं उनको कैसे समन्वय हम ला सकते हैं, फिर हम जो शरीर की गांठ, हृदय की गांठ, मन की गांठ, इनके बिना ये संभव ही नहीं कि हम आगे की ओर बढ़ें। जब तक ज्ञान की गांठ अज्ञान की गांठ है तब तक भगवान और सच्चा ज्ञान वो केवल एक या तो किताबी चीज़ रहेगी या फिर वो एक कोई स्वप्न के रूप में या एक विश्वास के आधार पर रहेगा। तो ये गांठें कैसे खोलनी है, इन गांठों को का जो मूल है वो अहम भाव है, तो रिलीज फ्रॉम द ईगो। फिर जैसे ही ईगो से निकलता है व्यक्ति तो कॉस्मिक सेल्फ, तो विश्व चेतना में वो प्रवेश करता है, और विश्व चेतना में प्रवेश करता है तो वो उसका उसकी मुक्ति है। श्री अरविंद के योग में जो मुक्ति जिसको कहा जाता है वास्तव में ईगो के भाव से मुक्ति, जिससे वो विश्व चेतना में प्रवेश करता है। इसे एक फंडामेंटल अज्ञान से मुक्ति, लेकिन विश्व चेतना में भी दो, एक है उसका कॉस्मिक इग्नोरेंस, कॉस्मिक ट्रुथ। तो कॉस्मिक ट्रुथ में जब प्रवेश करता है तो उसकी एक फंडामेंटल इग्नोरेंस जो है अज्ञान जिसमें वो ढका हुआ है उससे मुक्त होता है। उसके बाद मोड्स ऑफ द सेल्फ, अब आत्मज्ञान की बात होती है, लेकिन वो सेल्फ क्या है वो सेल्फ, तो वहाँ पर शेरविंद बात करते हैं कि ये सेल्फ जो है ये त्रिविध स्तर पे हम या त्रिविध एस्पेक्ट में हम जान सकते हैं, मोड्स में, या तो हम अपने अंदर भगवान को जान सकते हैं, या हम विश्व चेतना के स्तर पर जान सकते हैं, या हम उससे आगे ट्रांसेंडेंट स्तर पर जान सकते हैं, या इन सबको एक साथ। यहाँ जानने से मतलब एक किताब का पढ़ा हुआ या मेंटल नॉलेज की बात नहीं है, किंतु जानना मतलब अनुभव के साथ, तादात्म्य के साथ। और फिर स्वाभाविक है जब हम ये जानते हैं, जब हमें ये ज्ञान का उदय होता है तो द रियलाइजेशन ऑफ सच्चिदानंद। अब उदय इसलिए होता है कि ये ऐसा नहीं है कि आज ज्ञान में है कल रियलाइजेशन हो गया सच्चिदानंद का, वो सच है कि एक पॉइंट होता है जब वो बिल्कुल वैसे ही होता है कि अभी है और अभी नहीं, लेकिन एक यात्रा होती है जिसमें धीरे 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 वो उदय होना शुरू होता है। तो रियलाइजेशन ऑफ सच्चिदानंद, यानी सच्चिदानंद भगवान जो हमारे लिए अभी तक केवल एक बातें हैं और विश्वास है या मान्यता है, वो हमारे लिए रियल हो जाते हैं। जब भगवान हमारे लिए रियल हो जाते हैं अपने उस स्वरूप में, ट्रू एग्जिस्टेंस, यानी जब हम इस चीज़ के बारे में निश्चित होते हैं कि एक ही सत्ता है वास्तव में, जो वो भगवान की सत्ता है, जब हम ये जानते हैं कि एक ही शक्ति है जो भगवान की शक्ति है, जब हम ये जानते हैं कि संसार में एक ही आनंद है, भगवान का आनंद है, जो इस सृष्टि के अंदर खेल रहा है अपने आप से, अपने ही अहंकार के क्षेत्र में आकर, जैसे ठीक जैसे एक आप एक अगर नदी के अंदर कोई प्रतिबिंब गिरता है, सूर्य का हो या चंद्रमा का हो, और वो अस्थिर है तो प्रतिबिंब ब्रोकन दिखाई देगा। तो उसी प्रकार से एक ही सच्चिदानंद है किंतु उसके अलग अलग एस्पेक्ट टुकड़ों में हमको बटा हुआ दिखाई देता है, या किसी अगर टूटे हुए शीशे में वो भी अगर डिस्टॉर्टेड है हम अगर देखेंगे प्रतिबिंब को, तो सृष्टि एक प्रकार से प्रतिबिंब है भगवान का, लेकिन भगवान एक है और वही सृष्टि में भी उन्हीं का प्रतिबिंब है, लेकिन वो सृष्टि अभी चूंकि वो डिस्टॉर्ट करती है हर लेवल पर, इसलिए भगवान हम का प्रतिबिंब हमको डिस्टॉर्टेड दिखाई देता है, कोई एक पक्ष को पकड़ता है, कोई दूसरे को, कोई तीसरे को, इत्यादि इत्यादि। इसके बाद डिफिकल्टीज ऑफ द मेंटल बीइंग चैप्टर था, ये डिफ़िकल्टी क्या है मेंटल बीइंग की, सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी कि वो या तो ये या तो वो, दोनों एक साथ, ये माइंड के लिए समन्वय करना बहुत कठिन होता है। तो उसकी बात श्री अरविंद करते हैं। और फिर द पैसिव एंड एक्टिव ब्रह्मन एंड द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस. पैसिव एंड एक्टिव ब्रह्मन मतलब कि दोनों, एक स्टैटिक भगवान जो है ब्रह्म के रूप में और दूसरा है एक्टिव यानी वो शक्ति रूप में, या माया भी उन्हीं के अंदर से निकली है. तो ये दोनों में विरोध नहीं है, दोनों परस्पर एक ही सत्य के दो पहलू हैं. और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस विश्व चेतना, क्योंकि विश्व चेतना को आप बिना एक्टिव ब्रह्म के नहीं समझ सकते हैं. जिन्होंने केवल भगवान को एक शांति में उपस्थिति के रूप में, जो साक्षी के रूप में पाया, वो विश्व चेतना को नहीं समझ पाएंगे. बिकॉज विश्व चेतना में तो हर कुछ, सब कुछ गतिशील है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, सृजन हो रहा है, संहार हो रहा है, पोषण हो रहा है. तो ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो इसको जनरली माया एक वर्ड यूज करके उसके अधीन कर दिया गया. लेकिन ये शक्ति माया की कहाँ से निकली, तो विश्व चेतना को समझने के लिए ब्रह्म का ही जो सक्रिय और अक्रिय ब्रह्म, इन दोनों की को जानने की आवश्यकता है. और फिर अब जो चैप्टर है वो है वननेस. यहाँ तक थोड़े कठिन है चैप्टर, वननेस तक. इसके बाद धीरे धीरे हम उन विषयों से श्री अरविंद हमको हमारा रिवील करेंगे जिनके प्रति हम, जिनको हम थोड़ा बहुत हमने जिनके बारे में सुन रखा है. किंतु ये शब्द एकत्व, ये उपनिषद में एक जगह एकत्व मनुपश्यता, तो ये इन इसको अलग अलग ढंग से लोग समझाते हैं. लेकिन वास्तव में ये एकत्व है क्या, क्योंकि अब बचा क्या है जानने को. आपने बता दिया कि एक ही भगवान है, हर चीज़ के पीछे एक ही शक्ति है जो कार्यरत है. तो फिर वो कौन सा एकत्व है जो बचा है. पहले तो एक से एकत्व, यानी इस सृष्टि के अंदर जो कुछ भी है वास्तव में वो एक ही है और वही खेल रहा है अपने आप से. तो ये बात तो एक एकत्व से सीधी निकलती है. फिर सृष्टि के अंदर ना केवल वो साक्षी है बल्कि शक्ति भी है. तो ये दोनों ही चीज़ें ईश्वर शक्ति के रूप में, लॉर्ड के रूप में इस संसार में सक्रिय है. वो केवल एक निष्क्रिय साक्षी के रूप में नहीं है जो कहीं बैठा हुआ केवल हमारा हिसाब किताब कर रहा है. अब वो ना केवल ईश्वर है जो देख रहा है, जान रहा है, सक्रिय है, ऊर्जा दे रहा है, बल्कि वो इसकी हर एक गति में बह रहा है, हर एक गति में उतरा हुआ है. तो ये भी हम लोगों ने देखा एकत्व से. ये भी है कि वो केवल लॉर्ड होता कौन है जो बैठ के सबको दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर आपका हिसाब किताब ले रहा है कि अच्छा आपने क्या किया उसका, मुझे आके हिसाब किताब दो. नहीं, वो उसमें भी अंदर जाके खेल रहा है. तो अब ये जो एक है वो सब कुछ, सारी सृष्टि, वो उसी के साथ उसमें हर घट में वो समाया हुआ है. लेकिन अगेन ये बात ट्रेडिशनल योग में कही गई है, लेकिन ट्रेडिशनल योग में इसको, इसमें एक असंतुलन है. असंतुलन क्या है कि ट्रेडिशनल योग में ये मान्यता है, मानते कुछ एक योग में, ये नहीं सब नहीं, ये कहा गया कि भाई भगवान घट घट में समाया है. लेकिन फिर अगर वो घट घट में समाया है तो फिर केवल वहाँ क्यों है और ये संसार एक अज्ञान में क्यों है, ये इसका एक प्रश्न उठता है. दूसरा ये है कि अगर वो घट घट में समाया हुआ है तो फिर किसी प्रकार की आपके अंदर कल्ट, सेक्ट, रिलीजन, कोई भी प्रकार की ये लिमिटेशंस ये नहीं आएंगी, बिकॉज वो घट घट में समाया है. फिर ये भी प्रश्न उठता है कि अगर वो घट घट में समाया है तो हम कहीं और जा करके भगवान को क्यों खोजते हैं. तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो इससे जुड़े हुए हैं. कहा जाता है कि घट घट में समाया है, लेकिन आमतौर पे केवल एक उपस्थिति के रूप में. समस्या सारी वहाँ होती है कि प्रकृति का जो खेल है, जन्म मरण का जो चक्र है, जो हमारी इंडिविजुअल सोल है, वो उसमें उलझी हुई है. भगवान कौन है जो घट घट में है लेकिन वो एक प्रेजेंस के रूप में है जो आपको इस चक्र से बाहर निकाल सकता है. लेकिन वो चक्र कैसे चला, क्यों चला, कहाँ जा रहा है, ये बातें मिसिंग है. दूसरा क्या होता है कि ये जो ट्रेडिशनल योग में है उसमें असंतुलन इस प्रकार का भी है कि माना जाता है कि भगवान निर्गुण और सगुण दोनों हैं. लेकिन अगर आप किसी पूछेंगे तो जनरली जो निर्गुण पंथ की ओर जिनका झुकाव है वो बोलेंगे हाँ दोनों हैं, लेकिन सच तो ये है कि निर्गुण इज़ द फाइनल ट्रूथ, फॉर्मलेसनेस फाइनल ट्रूथ है. वो एक ऐसी चीज हो जाती है जहाँ पर कहीं ना कहीं पर वो रेखा खींचती है, एक ज़्यादा है एक कम है. ये एक अनस्पोकन चीज़ है कि है निर्गुण भी है सगुण भी है, लेकिन निर्गुण ज़्यादा. आप सगुण ब्रह्म के उपासकों से पूछेंगे तो वो इसको बिल्कुल रिवर्स करके बताएंगे. तो कहीं ना कहीं वो भी असंतुलन है. तो ये सारी चीज़ें एकत्व में, और जो अंतिम चीज़ जो आती है समस्या एकत्व की, जिसको श्री अरविंद यहाँ थोड़े विस्तार में लेते हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे मूलतः, वो ये कि ये सच है कि सच्चिदानंद हर जगह हर प्लेन पर है, सर्वत्र है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। हम नहीं जानते तो ये हमारी समस्या है, सच्चिदानंद की समस्या नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि यहाँ पर वह अज्ञान से ढका हुआ है। अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो समस्या ये है कि सच्चिदानंद है, एकत्व ही है, लेकिन वो ढका हुआ है। इसको ऐसे उदाहरण के रूप में ले लें कि जब आप कोई छड़ी को पानी के अंदर डालते हैं, ये बचपन में खेल भी होता था कि आप उसके अंदर बाल्टी के अंदर एक सिक्का होता था, छड़ी होती थी, छोटे बच्चों का खेल है कि आप इसको टच करो, तो हम जब डालते थे तो छड़ी थोड़ी अंदर जाके टेढ़ी हो जाती थी रिफ्रैक्शन के कारण। हाँ, छड़ी टेढ़ी हो गई, लेकिन ये क्या कोई दूसरी छड़ी है? नहीं, वही छड़ी है। तो यहां पर एकत्व को ऐसे समझना है कि वो डिस्टॉर्शन भी है, जब हो रहा है तो उसी एकत्व का ही डिस्टॉर्शन हो रहा है, वो उस एक का ही हो रहा है, ये कोई और नहीं है, कोई चीज जो आ गई है। और इसको रिस्टोर करने का भी ऐसा नहीं है कि इसका अनुभव, श्री कृष्ण स्वयं इसका एक बड़ा सुंदर एक जीवंत उदाहरण है, कई सारे उनके उदाहरण है एकत्व के। तो एक जो उदाहरण है वो बड़ा सुंदर है, ये कहानी हम सब जानते हैं कि जब वो जब दुर्वासा ऋषि आए, उनको भेजा है शकुनी और दुर्योधन ने कि वहाँ जा कर के अक्षय पात्र है द्रौपदी का, तो वहाँ भोजन ग्रहण करने जाते हैं। और जब भोजन ग्रहण करने जाते हैं तो वो कहते हैं हम नहा के आ रहे हैं। तब तक द्रौपदी ने अक्षय पात्र से सारा भोजन खा लिया है, सब लोगों ने खा लिया है, द्रौपदी अंत में खाती थी। और जब द्रौपदी खा लेती थी तो फिर उसके अंदर कोई चीज़ नहीं बचती थी, फिर आप उसको उस दिन के लिए वो ख़त्म हो गया, अब आप उससे फिर से नहीं, उस दिन का आपका समाप्त हो गया। अब उस समय लोग स्टोर नहीं करते थे, ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है, मुझे तो लगता है एज एन असाइड की ये स्टोर करने की जो फ्रिज की जो चीज़ आई और स्टोर करने की पॉसिबिलिटी हुई, उससे बहुत ज़्यादा खान पीन बिगड़ा भी। अब बचपन में ये स्टोरेज की पॉसिबिलिटी कम से कम मैं जिस जनरेशन का हूँ उसमें नहीं होती थी। तो अब क्या होता था, आपको भूख नहीं लगती थी, आप खाना, पता नहीं माइंड की एक कंडीशनिंग थी, ऐसा नहीं कि घर में कुछ ना कुछ तो होती था कि बहुत भूख लगे तो गुड़ आप खा सकते हो कुछ, लेकिन स्टोर करने की जो पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। अब पॉसिबिलिटी बन गई है, अब आप फोर्स डाइटिंग कर रहे हो, खैर ये एक अलग चीज़ है। तो द्रौपदी के समय की बात है, तो अक्षय पात्र से सब समाप्त हो जाता है और उधर वो खाने नहाने चले गए। तो अब सब असमंजस में है कि अब क्या करेंगे, दुर्वासा ऋषि क्रोधित होंगे, कुपित होंगे, और उस समय श्री कृष्ण आते हैं और बड़ा आग्रह करके फिर अंत में और ढूंढ ढांड के अन्न का एक दाना निकाल लेते हैं, और उसको वो जब ग्रहण करते हैं तो कहते हैं आ ब्रह्मांड तृप्त हुआ या मैं तृप्त हुआ उस एक दाने से। अब इस कहानी को बहुत कई बार सतह के रूप में भी बताया जाता है कि सतह ही मीनिंग इसका क्या है, अर्थ कि देखो एक एक दाने की कद्र करनी चाहिए। ये तो बहुत एक ऑब्वियस सा मीनिंग है, लेकिन ये बड़े बहुत गुड़ रहस्य इस कहानी में। तो एक अगर अन्न के दाने को अगर हम देखें, केवल एक बड़े वैज्ञानिक रूप से भी देखें, तो उसके अंदर क्या क्या छिपा है। उसके अंदर केवल किसान की मेहनत नहीं है, उसके अंदर पृथ्वी का तत्व है, उसके अंदर सूर्य का तत्व है, उसके अंदर वायु का तत्व है, उसके अंदर जल का तत्व है, उसके अंदर अग्नि का तत्व है, सब कुछ है उस दाने के अंदर। और ये जो मेटेरियल फोर्सेज हैं, इनके पीछे जो कॉरेस्पॉन्डिंग गॉड हेड्स हैं, जिनके बिना ये आएंगे नहीं, और ये सारे गॉड हेड्स के साथ साथ उसके अंदर जो सुप्रीम गॉड हेड है, क्योंकि उसी से सब निकले हैं, तो एक एक दाने के अंदर सारा ब्रह्म समाया है। इसको थ्योरेटिकली तो हम लोग जानते हैं, प्रैक्टिस में भी भारतवर्ष में ये परंपरा थी कि भोजन करने के पहले तर्पण अर्पण करते थे, और अर्पण करते थे उस भगवान को, पारब्रह्म परमेश्वर को। और कई लोग इसको समझते नहीं हैं, वो बार बार से देखते हैं कि भाई ऐसे करके तुम भगवान को ऑफर कहाँ है, भगवान थोड़ी खाएंगे, उनका मुंह नहीं है और आँख नहीं है। ये तो बहुत ही, जिसको कहा जाए, बहुत ही एक सतही क्रूड थिंकिंग है, पर ये उस सेंस में है, ये रिकॉग्निशन है कि सब कुछ उन्हीं का है और मैं भी उन्हीं का हूँ, और मैं भी वही मैं बन गया हूँ, और जब मैं ले रहा हूँ तो वास्तव में ब्रह्म ही ब्रह्म को अर्पण कर रहा। और ये पूरी फ्रेज है गीता में, उस फ्रेज का यहाँ पर इस कहानी में उसका रियल इम्पैक्ट बताया है। तो ये नहीं कि कोई ब्रह्म ज्ञानी सदैव ये करेगा कि सुबह उठ के एक दाना डाल के बोलेगा आज मैं प्रसन्न हूँ, तृप्त हूँ, तो सारी सृष्टि तृप्त हो जाए, नहीं करेगा वो। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि तब आप सृष्टि में जो कर्म का जो विकास का चक्र है उसको समाप्त कर दोगे। क्योंकि सबसे पहली चीज जो मनुष्य को भेजती है काम पर, क्रियाशील बनाती है, वह भूख। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, और कई लोग जैन मुनि तो इसको इस हद तक ले जाते हैं कि भूख ही सबकी जड़ है। तो तुम खाना अगर बंद कर दोगे अंत में तुम विजय प्राप्त कर लोगे, बट दैट इज गोइंग बिट टू फार एंड लुकिंग एट थिंग्स ओनली फ्रॉम द सर्फेस। तो भूख ये सच है कि भूख जो है वो लोगों को जब क्रूड अवस्था में होता है जीव, तो उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन श्री अरविंद दिव्य जीवन में बताते हैं भूख यदि प्रथम है तो अंतिम सत्य प्रेम है और एकत्व है। तो यहां पर जब श्री कृष्ण लेते हैं तो वो उस सत्य को एक्टिवेट करते हैं अपने अंदर, और उसको केवल उतने लोगों के लिए, वो उनके अंदर की अवस्था है कि वो खा रहे हैं तो ये 20 के 20 लोग हैं दुर्वासा ऋषि के साथ, वो सारे तृप्त हो जाते हैं। तो यदि कोई वास्तव में इस, लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं कि संसार में ये असामंजस्य दूर कर देगा, क्योंकि कई बार लोग ये भी प्रश्न करते हैं तो ये तो बहुत अच्छा है, नहीं वो नहीं करेगा ये दूर, लेकिन वो चीज़ों को व्यवस्थित कर रहा है अपने हिसाब से वो चीज़ों को। अब इसकी एक रियल स्टोरी माता जी की भी है। वो किस तरह से स्टोरी है, जब हरित क्रांति के पहले जब दुर्भिक्ष और अकाल पड़ा था, अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ इसलिए मुझे स्मरण आ गई, तो एक जगह है जिसका नाम है महसुआ, एमपी में है, और श्री अरविंद ग्राम के नाम से भी जानी जाती है। वो श्री अरविंद ग्राम उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब अकाल के समय वहाँ जो मैनेज कर रहे थे वो माता जी को उन्होंने चिट्ठी लिखी, कहा यहाँ बहुत बुरी हालत है, दुर्भिक्ष हो रहा है, अकाल पड़ गया है, क्या किया जाए। सारे प्रयास कर रही थी गवर्नमेंट, सब कुछ हो रहा था। तो माता जी ने फिर बहुत ध्यान में चली गई, फिर उन्होंने एक आश्रम के गेहूं के कुछ वो दिए, बालियां दी, कुछ एक ग्रेन्स दिए, ध्यान करने के बाद कहा इसको तुम वहां जाके लगा देना। अब वो 3 times बम्पर क्रॉप हुई और वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए जगह जगह, और ये बात इसकी चर्चा टेलीविजन पर हुई, उस समय डिबेट हुआ इसका कि ये कैसे संभव है, कि ये कैसे ये चीज हुई जो लगभग असंभव है। एक बार यहाँ की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब कोई व्यक्ति जा करके माँ को अचानक आकर के उन्होंने कहा ग्रैंडरी से कि माँ सारा आज का जितना था चावल वो तो ग्रैंडरी से सब समाप्त हो गया है, लेकिन बहुत लोग आ गए हैं, अब हम क्या करें। तो माँ कहती हैं ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम जाओ फिर से और उस पात्र के अंदर जहाँ पर रखते हो वहाँ से निकाल के तुम देते चले जाओ, देखना मत, देते चले जाओ, और लेकिन आगे से ये कभी मत करना, तुम बताना कितने लोग हैं। तो वो करता चला गया और बिल्कुल जितना चाहिए था वो निकलता चला गया। तो ये सारी संभावना है, ये केवल एक कल्पना की उड़ान भी नहीं है, और केवल एक कि अच्छा ठीक है हम एकत्व में चले गए, इसके इम्पैक्ट हैं जीवन पर जिसको अभी हम नहीं जानते। ये सुपरामेंटल बीइंग उस एकत्व में जिएगा तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे। माने इसको बताया भी है कि एक व्यक्ति के शरीर में जो हो रहा है वो दूसरे व्यक्तियों के शरीर में जहाँ वो चाहेगा वैसा हो सकता है, अपने शरीर में ही वो किसी की सर्जरी कर लेगा, ये भी माँ के अनुभव हैं, किसी को ट्यूमर अगर हो रहा है। लेकिन अगेन अभी वो जो प्रोसेस है इवोल्यूशन की, भगवान उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं क्योंकि यू हैव टू बी रेडी। ये नहीं कि अचानक सब लोग उठे और कहा हम सुपरमेंटल हो गए, इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि आपने फिर तो वो गीता की वो बात आती है कि बुद्धिभेद, ऐसे नहीं किया जाता है, एक इवोल्यूशन की प्रोसेस है। लेकिन ये संभावना का डोर खुल जाता है उसके बाद। तो एक एक दाने के अंदर पूरा संसार, सृष्टि, भगवान सक्रिय अक्रिय दोनों ही रूप में विद्यमान है, लेकिन आम तौर पर ये चीज नहीं होती क्योंकि संसार में अज्ञान की परत है। तो यहां पर उस परत को कैसे हटाना है, क्योंकि जब वो परत हट जाएगी शरीर के अंदर, केवल एक फंडामेंटल लेवल पर नहीं, फंडामेंटल लेवल पर तो जरूरी है उसको हटना, तभी हम अनुभव कर पाएंगे भगवान का, लेकिन एक एक अणु के अंदर, एक एक सेल कोशिका के अंदर आप कल्पना करें कि वो जो परत है अज्ञान की चली गई तो क्या होगा। फिर वो सत्य आएगा, ऑल माइटी पावर्स आर शट इन नेचर सेल्स, वो कहाँ छिपी हैं, अज्ञान की परत के पीछे। तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा, ये सारे डॉक्टरी वॉक्टरी सब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो जो नया बीइंग होगा वो तो हीलिंग ऐसे करेगा। और वो जितनी मात्रा, क्योंकि अगर शरीर उस हाई वोल्टेज को ले नहीं पाएगा तो राख हो जाएगा, इसीलिए वो धीरे धीरे रेगुलेट करके विकास उस दिशा में जाएगा। तो ये एकत्व एक बहुत बड़ी, ये केवल विश्व चेतना की बात नहीं है, ये भगवान के रियलाइजेशन की बात नहीं है, उससे आगे की चीज है। और इसीलिए कहा गया कि जो एकत्व को केवल जान भी लेता है, देख लेता है, उसको मोह या शोक नहीं होता, क्योंकि उसको कोई डिल्यूजन नहीं होता है। वो जानता है कि हर किसी के अंदर भगवान ही खेल रहे हैं अपने आप से। और यही नहीं, डिस्टॉर्शन का भी अर्थ, वो हर चीज के अंदर भगवान का क्या प्रयोजन चल रहा है और कैसे वो उसके माध्यम से ले जा रहे हैं, ये सारी चीजें उसके सामने स्पष्ट हो जाती हैं। तो वननेस, अब इसमें पहले शेरविन बताते हैं कि वो सब जो पहले रियलाइज कर लिया, उसके बाद जब हम सच्चिदानंद के यूनिटी को प्राप्त कर लेते हैं तो क्या क्या होता है। तो ये पेज नंबर 419, द ट्रेडिशनल नॉलेज वाइल इट एडमिट्स दिस ट्रूथ इन थ्योरी, एकत्व के सत्य को मानता है। ईशोपनिषद की बात है, ईशोपनिषद खैर बहुत ही, कईयों को पता होगी शायद, ईशोपनिषद बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। जो अपने यज्ञवल के जो गुरु थे, आई थिंक वैशंपायन, उन्होंने जो वेदों का ज्ञान दिया था यज्ञवल को, तो एक बार दोनों के बीच में वाद विवाद हो गया, गुरु और शिष्य के बीच में। तो गुरुजी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा कि तू जो सारा मैंने ज्ञान दिया ना उसको वापस कर। तो कहा जाता है कि यज्ञवल ने वो सारा ज्ञान वापस कर दिया, ही वॉज बिरेफ्ट ऑफ एनी नॉलेज। अब उन्होंने अपने अंदर से ज्ञान प्रकट किया। तो इस अपने आप में, तो ईश उपनिषद के जो लिखने वाले हैं वो याज्ञवल्क्य हैं, और वो उसमें आता है आई थिंक कृष्ण यजुर्वेद में आता है। और बहुत ही सुंदर जो उन्होंने निकाल प्रकट किया है संसार में, वहाँ एकत्व की बात होती है, हर जगह नहीं है। पर ट्रेडिशनल नॉलेज जो इसकी बात भी करता है वो थ्योरी में तो इसको मानता है, येट रीजन्स प्रैक्टिकली एज इफ द वननेस वेयर नॉट इक्वल एवरीवेयर और कुड नॉट बी इक्वली रियलाइज इन ऑल, इट फाइंड्स इट इन द अनमैनिफेस्ट एब्सोल्यूट बट नॉट सो मच इन द मैनिफेस्टेशन। ये तो कॉमन चीज यही होती है, यहां भगवान है सब जगह, लेकिन ये संसार में तुमको बहुत मेडिटेशन करोगे अंत में मिल जाएंगे, लेकिन फिर तुमको जाना है, बार बार आओगे ऐसे नहीं होता है, वो है कहीं और, संसार में है, पर बेसिकली जो ज्यादा भगवान है वो इसके पार अनमैनिफेस्ट, जो अभी अनभिव्यक्त है, उस अवस्था में, यानी तुमको ये ब्रह्मांड के परे जाना है, विश्व के परे जाना है, विश्व चेतना के, जो कहते हैं ना जन्म कर्म का चक्र, इसका अर्थ यही है कि जो इंडिविजुअल सोल है वो विश्व चक्र के अंदर प्रवेश करती है। तो विश्व चक्र में ये संभव नहीं है कि तुम भगवान को रियलाइज करके, तो तुमको अंत में जाना वहीं पर है, इसके पार जाना है। इट फाइंड्स इट इन द अनमैनिफेस्ट एब्सोल्यूट, फाइंड्स इट प्योरर इन द इम्पर्सनल दैन इन द पर्सनल, कि भाई भगवान की ये तो एक छवि अपने लिए उन्होंने क्रिएट की है, पर सच तो उनका उस इम्पर्सनल में है, निर्वैयक्तिक सत्ता में है। वो कोई हमसे रिलेट नहीं करते, कोई हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर नहीं देते हैं, करना है कर लो। और सच बात है कि अगर कर्म चक्र ही सब कुछ है तो प्रार्थना का क्या महत्व है, फिर तो प्रेयर हैज नो मीनिंग, वो एक परफंक्ट्री चीज हो जाती है, आप करोगे सुकून मिलेगा। तो वहाँ वो कहते हैं हाँ ये ठीक है, दिल के बहलाने को साधक ये ख्याल अच्छा है, पर सच तो ये कि भगवान इम्पर्सनल है। ये इस प्रकार का भेद, या कुछ लोग कहेंगे भेद अभेद, तो वो खैर अभी हम लोग उस फिलॉसफी में ना जाएं। सेटिस्फाइंगली प्रेजेंट इन द साइलेंट एंड इनएक्टिव ब्रह्मन, नॉट सो सेटिस्फाइंगली प्रेजेंट इन द एक्टिव, तो ये भी कहा जाता है। तो एक बार तो किसी ने मुझसे ही ऐसे कह दिया, कहा कि जब आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा ना तो चुप हो जाओगे आप। मैंने कहा क्या पता, पूर्ण ज्ञान से चुप अगर होना, ये प्रश्न किसी ने शेरविन से किया था, तो मुझे उसका उत्तर रेडी था आंसर के लिए। शेरविन से किसी ने ये प्रश्न किया था कि जब आप पा लेते हो उस साइलेंस को, तो फिर वर्ड कुछ भी लिखने पढ़ने की कहने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। तो शेरविंद कहते हैं हाँ ऐसा ही श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि गगरी जब भर जाती है तो बोलती नहीं, लेकिन उन्होंने भी बोला और उनके शिष्य विवेकानंद ने भी बोला। तो ये दोनों हम कहीं ना कहीं एक विरोधाभास ले आते हैं कि ये तुम एक पर्दा रख करके व्यक्ति बोलता है, ऐसा नहीं है, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि सारी सृष्टि में अगर एक ही है, वही चुप्पी में भी है और वही वाणी में भी है, उनकी वो है ना वर्ड एंड द साइलेंस। द इंटीग्रल नॉलेज मेक्स नो सच डिविजन, इट अराइव्स एट अ डिफरेंट काइंड ऑफ एब्सोल्यूटनेस इन इट्स विजन ऑफ द यूनिटी, इट फाइंड्स द सेम वननेस इन द अनमैनिफेस्ट एंड द मैनिफेस्ट, इन द इम्पर्सनल एंड द पर्सनल, इन निर्गुण एंड सगुण, इन द इन्फिनिट डेप्थ्स ऑफ द यूनिवर्सल साइलेंस एंड द इन्फिनिट लार्जनेस ऑफ द यूनिवर्सल एक्शन। तो ठीक है, जब आदमी चुपचाप बैठता है, ध्यानस्थ होता है, तो भगवान मिलते हैं, लेकिन वही भगवान वो घोर कर्म में भी, वही भगवान उतने ही भगवान, बल्कि मैं तो इस तरह से कहता हूं कि वो साइलेंस को धारण करते हुए पूरे सक्रिय रूप में वही भगवान कर्म कर रहे हैं। इसीलिए माने कई लोगों का यू डोंट नीड मेडिटेशन, कुछ को कहा कि यू नीड इट। तो पहले वो इस यूनिटी की बात करते हैं। द कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ यूनिटी इज देयर फॉर द एसेंस ऑफ द इंटीग्रल नॉलेज एंड ऑफ द इंटीग्रल योगा। सचिदानंद इज वन इन हिमसेल्फ इन वॉट एवर स्टेटस और वॉट एवर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो ये नहीं कि वो चीटी के अंदर कम हो गया है भगवान, लेकिन वो कम हो गए। ये जो अधिक और कम का हमारे अंदर ये भाव रहता है, और इस जब ये जागृत हो जाता है कि हर चीज के अंदर, अणु के अंदर भी उतने ही भगवान है, जिसकी बात की है उपनिषदों ने कि पूर्ण से पूर्ण निकला, तो फिर हम उस पूर्ण ब्रह्म में रहने लगते हैं, क्योंकि वी नो कि ये जो समम ब्रह्म भी इसको कहा गया है लाइव डिवाइन में, कि जो बड़ा और छोटा ये हमारे इल्यूजन्स हैं, लेकिन भगवान सब में एक ही तरह से एक ही पूर्ण शक्ति के साथ, ये नहीं कि उन्होंने उनकी वो शक्ति नहीं है, वो जब चाहें अपनी पूरी शक्ति को खोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं को सीमित किया हुआ है। ओके, अब फिर कहते हैं वी हैव टू सी हिम एज वन एग्जिस्टेंस, सच्चिदानंद एग्जिस्टेंस, बीइंग गैदर्ड इन इट सेल्फ एंड बीइंग डिस्प्लेड इन ऑल एग्जिस्टेंसेस। तो वही एक ही हैं, एक ही जो सब सत्ताओं के स्वामी भी हैं, और वही एक ही हैं जो ये सारी सत्ताएं बन गए हैं। एक्चुअली जीवन में सारे झगड़े बंद करने का यही उपाय है। ये बाकी जो कर रहे हैं ना गाजा प्लान, ये प्लान, ये सक्सीड नहीं होने वाला है। उसका कारण ये कि एकत्व नहीं है, यूनिटी नहीं है। ये सबको पता है कि ये टेम्पररी पीस है, क्योंकि किसी को पुरस्कार मिल रहा है। ये तब तक नहीं जाएगी जब तक आप मनुष्य उस एकत्व या यूनिटी को नहीं जानेगा। वो तो कहते ना वो लड़ाई की चुल अंदर में उठेगी, करेगा आज नहीं तो कल करेगा, 10 दिन बाद करेगा, 1 साल बाद करेगा, 10 साल बाद करेगा, क्योंकि उसके अंदर ये भाव ही नहीं है। खासकर अगर बहुत ही कट्टरपंथी है जिसमें ये है कि भाई मेरा ही केवल भगवान भगवान है, तो संभव ही नहीं है कि वो रिकंसिलेशन हो। आपको वो फंडामेंटल लेवल पर रिकंसिलेशन करना है जो केवल एक स्पिरिचुअल इवोल्यूशन से ही संभव है। बाकी ठीक है, टेम्पररी चीज़ों का अपना एक महत्व है, मलहम लगा देना एक बात है, और अंदर से हीलिंग की प्रोसेस को एक्टिवेट करना वो दूसरी बात है। तो यहाँ पर एक ही एग्जिस्टेंस है, एज वन कॉन्शियसनेस कंसेंट्रेटेड इन द यूनिटी ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। तो उसके अंदर जो पूरी चेतना है वो भी वही चेतना है जो सर्वत्र सर्वव्यापी है। वन फोर्स स्टैटिक इन इट्स रिपोज ऑफ सेल्फ गैदर्ड कॉन्शियसनेस एंड डायनामिक इन इट्स एक्टिविटी ऑफ एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस। भगवान के अंदर उस एक सत्ता के अंदर, एक अमेय द्वितीय के अंदर वो सर्व चैतन्य है, लेकिन अपने अंदर वो गैदर्ड है, वही एक चेतना सब जगह डिप्लॉयड है, उनके अंदर वो सारी शक्ति ट्रांस में गैदर्ड है, वो अंदर एकत्रित है, वही एक शक्ति सारे संसार में ऑपरेट कर रही है। सारा आनंद उस एक के अंदर छिपा हुआ है, वही आनंद सारे संसार में व्याप्त है। तो ये यहां पर श्री अरविंद इसकी बात कर रहे हैं। वन फोर्स वन डिलाइट ब्लिसफुली अवेयर ऑफ इट्स फीचरलेस इंफिनिटी एंड ब्लिसफुली अवेयर ऑफ ऑल फीचर एंड फोर्स एंड फॉर्म्स इज इटसेल्फ। आनंद केवल आनंद ये नहीं कि जब मैं शांत बैठ के समाधि में हूं, एक एक चीज में। अब देखिए कई बार लोगों को नहीं समझ आता है श्री अरविंद कैसे वो माता जी भी छोटी से छोटी चीज में टेनिस खेलते खेलते वो लोगों को ले जा रही हैं, बच्चों से बात करते करते, किसी भी कर्म में वही आनंद है जो अनेकों रूप में प्रकट हो रहा है, चाहे आप पेंटिंग है या बर्तन धो रहे हैं। ये नहीं कि ये काम आपको करने हैं केवल क्योंकि शरीर की यात्रा है, बेसिकली मेडिटेशन करना है आपको चार घंटे, नहीं, क्योंकि वही एकत्व है जो इसमें है, ध्यान की अवस्था में वही क्रिया की और सारे कर्मों में वही है, आनंद है। फिर आगे कहते हैं वन माइंड कंटेनिंग ऑल मेंटल बीइंग्स एंड कंस्टिट्यूटिंग ऑल देयर मेंटल एक्टिविटीज। भारतवर्ष में इसीलिए कहा गया मनु की बात है, मनु मन के देवता हैं और उनके परे सुपर माइंड है वो, क्योंकि वो सीधा सूर्य से आता है ना, उनका ज्ञान विवस्वान मनु को देते हैं, मनु से इक्ष्वाकु। तो देखिए कितनी एकदम क्लियर कट प्रोसेस है। वन लाइफ एक्टिव इन ऑल लिविंग बीइंग्स एंड जेनरेटिव ऑफ देयर वाइटल एक्टिविटीज। तो अगर आप इस तरह से देखें तो कोई युद्ध हुआ जिसमें, या अगर ये नेशनल ज्योग्राफी आप देखेंगे तो ये चीज बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि कभी शेर जीत रहा है, कभी वो दूसरा जो भाग रहा था हिरण वो जीत गया, कभी भैंसे ने पलट, लेकिन एक ही शक्ति है जो दोनों में काम कर रही है, एक ही जीवन की शक्ति है। ये नहीं कि इसका जीवन अलग है उसका जीवन अलग है। इसीलिए प्रकृति इसमें नहीं उलझती है कि अच्छा बुरा, प्रकृति तो कहती है मेरे बनाए खिलौने मैंने तोड़ दिया। आप प्रकृति को कैसे समझाओगे? आपको समझना है कि वो प्रकृति अपनी ऊर्जा से बना रही है और वो अपना खेल खेल रही है और तोड़ रही है। हालांकि ये खेल पुराना है, बहुत लंबा चला है, अब इस खेल के नियम श्री अरविंद माता जी बदलना चाहते हैं। लेकिन वन लाइफ, लेकिन ईगो क्या कहती है, मेरा जीवन उसका जीवन। अब वहां समस्या शुरू होती है, ड्वेलिटी की समस्या। वन सब्सटेंस कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑल फॉर्म्स एंड ऑब्जेक्ट्स एज द विजिबल एंड सेंसिबल मोल्ड। सब्सटेंस भी एक ही, इसलिए शेरविन देख जाए कहते हैं कि अगर मेरे शरीर में कोई चीज होगी तो इतना तो तुम मानोगे कि मेरा शरीर भी उन्हीं तत्वों से बना है जैसे तुम्हारा शरीर। तो डिसाइपल कहता है हाँ, कहते तो यही संभावना तुम्हारे अंदर भी चली जाएगी। सो वन सब्सटेंस। अब यहां पर आता है कि लेकिन समस्या जो होती है, द इंटीग्रल योगा ऑफ नॉलेज हैज टू रिकॉग्नाइज द डबल नेचर ऑफ दिस मैनिफेस्टेशन, फॉर देयर इज द हायर नेचर ऑफ सच्चिदानंद इन विच ही इज फाउंड एंड द लोअर नेचर ऑफ माइंड लाइफ एंड बॉडी इन विच ही इज वेल्ड, एंड टू रिकनसाइल एंड यूनाइट द टू इन द वननेस ऑफ द इल्यूमाइंड रियलाइजेशन। तो जैसी बात हुई कि वो डिस्टॉर्शन भी जो हो रहा है वो चीज वही है, पावर वही है, लेकिन वो ईगो के कारण वो डिस्टॉर्ट हो गई। व्यक्ति को लगने लगा मेरी शक्ति, मेरी शक्ति मुझे सेटिस्फाई करने के लिए, मुझे संतुष्ट करने के लिए, मुझे आनंद देने के लिए। अब उसका नेक्स्ट स्टेप वो लेता है, कहता है लेकिन उसके पास जो आनंद है वो भी मैं छीनूंगा, तब मेरा आनंद बढ़ेगा। तो इस तरह से वो डिस्टॉर्ट होती है। तेन त्यक्ते न भुंजिता माघ्रधा कस्य सिद्धनम्। इसीलिए कहा गया है कि अगर आप किसी भी चीज को छीनने की चेष्टा नहीं करो, जो मेरे पास है, मेरे मुझे जो मिला है उसको एक गिफ्ट के रूप में मैं स्वीकार करूं, छीनने की चेष्टा नहीं करूं, क्योंकि वननेस की यही अद्भुत बात है कि आप आनंद में रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो मिला है वो आपको मिला है, लेकिन जैसे ही आता है कि मेरा पेन तो मुझे बहुत अच्छा, लेकिन उसका जो पेन है वो और भी अच्छा, वो समस्या होती है, होती है। एक बार मुझे किसी ने बड़ा सुंदर एक पेन गिफ्ट दिया इटली से, वो ग्लास का पेन, जस्ट इमेजिन, और इंक में रख के डुबा के लिखते हैं। अब मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी है, मैं माता जी को इसमें लिखूंगा, मेरे जो प्रेयर से ही इस पेन से लिखूंगा जिसमें ग्लास का पेन मैंने कभी नहीं देखा उसको, ना भूत हो ना भविष्य हो, वहां भूत में पहले तो कभी नहीं देखा। तो कई बार होता है ना, आप नेचुरली आप शेयर करना चाहते हो, इम्परफेक्ट इज द जॉय नॉट शेयर्ड बाय ऑल। तो शेयर किया मैंने, और किसी ने वो पेन ही कहा ये तो बड़ा अच्छा है मैं ले लूँ। तो अब मैंने कहा ये तो दूसरा प्रिंसिपल आ गया डिटैचमेंट वाला, तीने तक तीने पूछता। एक्चुअली हुआ है, भगवान की खेल है। तो मैंने कहा ले लो, अब दे तो दिया मैंने, मेरे को काटे अगले दिन। और जस्टिफिकेशन क्या आ रहा था, माँ को लिखना था, इतने दूर से आया था, ये कहीं तो मैंने डिस्टॉर्ट कर दिया, शायद किया भी कौन जाने, पर मैंने कहा अब गया तो गया, अब क्या कर सकते हो। तो ये जो प्ले है ना इसमें, लेकिन अब आपके पास मिला थोड़ी देर के लिए भी, आपने उस चीज को देखा, इतना ही था। ये आप आनंद का, तो फिर देन यू आर इन डिलाइट ऑलवेज। पर वो जब आता है कि नहीं एक मैं बांध दूं, जैसे धूप को आपने बांधने की चेष्टा की, पानी को बांधा, तो क्या होता है वो खत गिर जाता है, सीमित हो जाता है। तो अज्ञान क्या है, वो सीमित करता है, बांधता है। कहते वो भजन भी है ना कि धूप को किसने बांधा, आप नहीं बांध सकते हो, आप कोशिश करोगे इसको तो, खैर बांधते हैं आजकल लोग सोलर पैनल लगा करके, वास्तव में देखा जाए सनलाइट को बांधते हैं, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। वो वास्तव में इसका सिंबल है कि आप कैसे अविद्या और विद्या को मिला सकते हो। तो आप जब ईगो बांधने की चेष्टा करती है, यहाँ तो आप कोई ईगो उसके लिए नहीं, पर ईगो जब बांधने की चेष्टा करती है तो खो देती है। तो ज्ञान और अज्ञान की समस्या यही है, वही शक्ति है, लेकिन वो चीज हमें अज्ञान की ओर ले जाती है। वी हैव सिमिलरली टू चेंज। अब क्या है ना कि ये आपको गांठ खोलनी है, लेकिन ये गांठ खोल के केवल उस एक में चले जाना ये नहीं, उस एक के आधार पर अनेक। तो अब देखा जाए तो इसमें डिवाइन सोशलिज्म का, डिवाइन कम्युनिज्म का सत्य छिपा हुआ है। कैसे सत्य छिपा है, कोई भी चीज आपकी एक्सक्लूसिव है ये नहीं है। कम्यून आश्रम क्यों इस तरह से बना है, आश्रम में कोई चीज हम बोल सकते मेरी है नहीं कह सकते हैं। आपको घर मिला है कभी कभी तो बहुत ही अच्छा आपका, लेकिन जैसे मेरे किसी मित्र ने बड़े सुंदर ढंग से कहा, किसी ने पूछा तो वहां तुम कैसे रहते हो, कहते हैं बहुत बड़ा घर है मेरा, मेरे घर में 2000 लोग रहते हैं, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है ओलंपिक साइज का, और टेनिस ग्राउंड। कहते ये कैसा घर मिला है, कहते हैं हाँ मेरे रसोई घर में तो रोज 2000 लोग सुबह नाश्ता करते। अब ये सोच है ना कि सी कम्यून का मतलब यही होता है, ये ट्रेनिंग है, एकत्व की एक प्रकार की बेसिक ट्रेनिंग है। तो यहाँ पर वही चीज, अब यहाँ ये कम्युनिज्म नहीं है कि सबको एक जैसा स्टैंडर्ड फ्लैट मिल जाएंगे, नहीं, वो एक अलग ऑपरेशन करने वाली लॉ है कि जैसी 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 आपकी इनर इवोल्यूशन है उसके अनुसार, एकत्व तो कभी भी आपकी इवोल्यूशनरी प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो प्रेजेंट है। वी हैव सिमिलरली टू चेंज अवर सेंसेशनल एंड इमोशनल मेंटालिटी इनटू अ प्ले ऑफ द डिवाइन लव एंड यूनिवर्सल डिलाइट। अच्छा, मैटर एज ए, वी हैव टू रियलाइज मैटर एज ए सेंस क्रिएटेड मोल्ड ऑफ स्पिरिट, ए व्हीकल फॉर ऑल मैनिफेस्टेशन ऑफ द लाइट फोर्स एंड जॉय ऑफ सच्चिदानंद। शरीर क्या है, एक पात्र है, ऐसे ही उसको ट्रीट करना है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक पात्र है। ये नहीं कि ये, कई लोग कहते हैं ना ये गंदा मल मूत्र का, ये पता नहीं कैसी मानसिकता है, मुझे तो मेडिसिन में भी लगता था ये सब काम वो लोग ऐसे देखते हैं शरीर को, ये पात्र है, वो नेचर ने बड़े मुश्किल से डिजाइन किया है, क्योंकि उसी एक शक्ति को, क्योंकि एक ही एग्जिस्टेंस है। तो आप ये नहीं कह सकते कि शरीर अलग है, ये शरीर एक पात्र है जो उस शक्ति को, प्रेम को, आनंद को अपने अंदर रिसीव करके मैनिफेस्ट करना, ये उसकी योग्यता है। उसी प्रकार से वी हैव टू सी लाइफ एज ए चैनल फॉर द इन्फिनिट फोर डिवाइन एंड ब्रेक द बैरियर ऑफ ए सेंस क्रिएटेड एंड माइंड क्रिएटेड फारनेस एंड डिविजन फ्रॉम इट, सो दैट डिवाइन पावर मे टेक पोजिशन ऑफ एंड डायरेक्ट एंड चेंज ऑल अवर लाइफ एक्टिविटीज। तो जीवन की सभी गतियों में आप वही एक शक्ति कॉन्स्टेंटली आपके अंदर कार्य कर रही है, आपके थ्रू कार्य कर रही है, पहले शरीर के अंदर वही प्रकाश सौंदर्य भगवान की उपस्थिति धारण और उसके बाद जीवन की सभी एक्टिविटीज में वही शक्ति वही चेतना सब जगह जा रही है। ऐसे हमको जीवन को देखना है, पहले देखना चेंज करना है। वी हैव सिमिलरली टू चेंज अवर सेंसेशनल एंड इमोशनल मेंटेलिटी इनटू अ प्ले ऑफ द डिवाइन लव एंड यूनिवर्सल डिलाइट एंड वी हैव टू सर्च आउट द इंटेलेक्ट विच सीक्स टू नो एंड विल इन अस विद द राइट लाइट ऑफ द डिवाइन नॉलेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या नॉलेज हो गई कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं गॉन, ये पुराना ओल्ड कंसेप्ट। ईश्वर की प्रेरणा से मेरे अंदर तुम्हारे प्रति प्यार जगा है, लेकिन ये प्यार ये नहीं समझना कि तुम्हें कर रहा हूं, तुम्हारे अंदर ईश्वर जो है उनको ये प्रेम जा रहा है। अब दोनों व्यक्ति अगर ऐसा रखें तो कितना अद्भुत हो जाए संसार कोई किसी को कोई सफरिंग सॉरो इज आउट, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं प्रेम कर रहा है। वो व्यक्ति जब आता है तो प्रॉब्लम शुरू होती है, मेरा वाला तुम्हारा वाला, वो व्यक्ति नहीं वो ईश्वर प्रेम कर रहे हैं। और ईश्वर किसको प्रेम कर रहे हैं, तुम एक छोटा सीमित सत्ता नहीं, वो तुम्हारे अंदर जो ईश्वर है, ईश्वर ईश्वर से खेल रहे हैं। तो बहुत ज्यादा इसीलिए इस गेम को जब हम सीरियसली ईगो लेने लगती है तो प्रॉब्लम होती है। द डिवाइन इज लविंग द डिवाइन इन वन, इन मी इज लविंग द डिवाइन इन अदर। माने यही तो कहा है प्रेम के बारे में, लव इज नॉट सेक्सुअल इंटरकोर्स, लव इज नॉट द हार्ट हंगर फॉर अफेक्शन, लव इज अ माइटी वाइब्रेशन दैट कम्स फ्रॉम द वन एंड गोज टू द वन। तो क्यों कर रहे हैं भगवान, जॉय के लिए, जॉय मल्टीप्लाई हो रहा है। उन्होंने एक अदरनेस का सेंस क्रिएट किया, लेकिन वो कभी भूलते नहीं है, लव इज रीचिंग आउट टू लव इन एन अदर फॉर्म, तो मल्टीप्लाई हो रहा है। हम सोचते हैं बीच में कि वो मुझे प्रेम कर रहा है, यही अज्ञान है। तो पहले ही इस अज्ञान से निकलना है। और शेरविन कहते हैं कि ये तब तक संभव नहीं है, दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैनॉट बी कंप्लीट और रियली एक्सिक्यूटेड विदाउट द अवेकनिंग ऑफ द ट्रूथ माइंड विच कॉरेस्पॉन्ड्स इन द मेंटल बींग टू द सुपर माइंड एंड इज कैपेबल ऑफ रिसीविंग मेंटली इट्स इल्यूमिनेशन। तो अब मेन चीज ये है कि ये अगर मन को समझ आ गया, लेकिन क्या हम इसको कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइंड की ऑपरेटिंग सिस्टम ही है नहीं, एक हायर माइंड उसको समझा रहा है। इंटेलेक्ट तो है ना, कोई भी आइडिया रिसीव कर लेता है, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे वो बताया ना वो ग्लास वाला पेन, अब वो समझा नहीं पा रहा है। क्यों नहीं समझा पा रहा है, कि वो तभी संभव है जब सुप्रामेंटल चेतना आपके हर एक एक्टिविटी में एक्टिवेट होगी। और सुप्रामेंटल चेतना को एक्टिवेट करने के लिए मदर इज द सीक्रेट नाउ, ये क्योंकि ये योग की लॉजिक यहाँ पर श्री अरविंद बता रहे हैं, केवल मन में जान लेने से, बट इट इज इम्पॉर्टेंट, पहले मन को पता होना चाहिए कि मुझे किधर ले जा रहे हैं भगवान, ये तो मुझसे सब छीन रहे हैं। जो जो समझता है कि अरे वाह माँ ने देखो मुझे ये भी दे दिया वो भी दे दिया, तो कभी कभी पूछना चाहिए पक्का ना माँ ने दिया है, हाँ फिर कभी छीनेंगी तो नहीं, नहीं माँ कभी ऐसा नहीं करेंगी, क्यों उन्होंने दिया है छीन सकती हैं। अब देखिए वहां समस्या होती है, क्योंकि अगर दिया है तो लेने का अधिकार किसको होता है, जिसने दिया है उसको अधिकार भी है। अब क्यों लेती हैं, क्योंकि वो आपको और कुछ बेटर देना चाह रही हैं। ये मनुष्य के लिए बड़ा कठिन होता है, कहते पहले दिखाओ मुझे क्या देने वाले हो, हिसाब किताब करता है भगवान के साथ, फर्स्ट शो मी व्हाट यू आर गोइंग टू गिव, उसी में वो उलझा रहता है। और चूंकि वो इसको छोड़ नहीं पाता है, इसलिए उसको वो मिल नहीं पाता है जो भगवान देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो छोड़ नहीं पाता है। वो बाहर से छोड़ भी दे तो अंदर से नहीं छोड़ पाता है, इसी को मोह की और अज्ञान की गांठ कही गई है। तो ये सब चीजें अगर ऐसे पढ़ें तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं। बाय द ऑपोजिशन ऑफ स्पिरिट एंड माइंड विदाउट द फ्री ओपनिंग ऑफ दिस इंटरमीडिएट पावर, इंटरमीडिएट पावर यहां सुपर माइंड की बात कर रहे हैं, इधर माइंड है उधर स्पिरिट है, बीच में कौन है, सुपर माइंड। द टू नेचर्स हायर एंड लोअर स्टैंड डिवाइडेड एंड दो देयर मे बी कम्युनिकेशन एंड इन्फ्लुएंस और द कैचिंग अप ऑफ द लोअर इन टू द हायर इन ए सॉर्ट ऑफ ल्यूमिनस और एक्सटेटिक ट्रांस, देयर कैनॉट बी ए फुल एंड परफेक्ट ट्रांसफिगरेशन ऑफ द लोअर नेचर। अभी हम क्या कहते हैं, कोई चीज चली जाती है, हम कहते हैं अब भगवान ने ले ली, अरे भैया उन्हीं की थी ले नहीं ली। कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती तो हम क्या कहते हैं, और भगवान के पास चले गए, यहां किसके थे, तुम्हारे थे, यही तो इल्यूजन है, तो हमेशा भगवान कहते हैं जब आप इस भाव में रहेंगे तो आपके अंदर कभी कोई समस्या नहीं होगी। आज बात हो रही थी किसी से, मैंने कहा सारी प्रॉब्लम ये श्री कृष्ण की है कि उन्हें राधा कृष्णा का प्रेम मैनिफेस्ट कर दिया, मनुष्य तो तैयार नहीं है। अब हर व्यक्ति सोचता है कि वो मेरी राधा, ये मेरे कृष्णा। अरे इज इट सो इजी? तो किसी का क्यों, मतलब कठिनाई क्या है? मैंने कहा राधा का प्रेम ऐसा था कि उसने ना कभी विवाह किया, ना कृष्ण के साथ रही अगर देखा जाए, लेकिन उस प्रेम की कस्में खाई जाती। क्यों? क्योंकि वन ऑफ द थिंग्स वो ये थी कि राधा ने कभी कृष्ण को अपने से अलग नहीं पाया, और जेलसी ईर्ष्या का एक क्षण भी राधा के अंदर भाव नहीं आया। ये कहा जाता है, राधा कहती है जिसको श्री कृष्ण प्रेम करते हैं उसको मैं भी प्रेम करूंगी। एक इट इज इमोर्टलाइज्ड इन वन ऑफ एफोरिजम्स ऑफ श्री अरबिंदो, जहां वो कहते हैं कि इफ कृष्णा लव्स चंद्रबाली व्हाई शुड आई नॉट लव हर। अगर वो उसको प्यार करते हैं तो आप देखिए करना बड़ा कठिन है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन दिशा तो वही है, आज नहीं तो कल। आप चाहे लुढ़कते बुढ़कते जाओ या फास्ट फॉरवर्ड जाओ, बट दैट इज द ट्रूथ एंड दैट इज द, और प्रेम अपनी जो हाइट्स में ये टच करता है, इसलिए वो कहते हैं ग्लिम्स करता है, डेफिनेटली ग्लिम्स करता है कि भाई तुम जिसको भी प्रेम करते हो, यही तो होता है ना प्रेम की, उसको मैं भी स्वीकार करता हूँ उसको तो ये। लेकिन आमतौर पर वो हम क्या कहते हैं, भगवान ने मेरे से छीन लिया, किसी और को दे दिया, तो क्या होता है, दुख होता है, शोक होता है, क्योंकि एकत्व का अभाव है। फिर और इस प्रकार से करते करते इट रिवील्स द ट्रूथ। अब ये जो सुपरमेंटल है, आवर डायरेक्ट ट्रूथ परसेप्शंस ऑन द अदर हैंड कम फ्रॉम दैट सुपर माइंड। माइंड के अंदर ये डिवीजन होता है, सुपर माइंड में नहीं होता है। अब नई डिवीजन होता है, मतलब कि वो सारे लेयर्स को एक साथ जानता है। ए विल दैट नोज एंड ए नॉलेज दैट इफेक्ट्स विच क्रिएट्स यूनिवर्सल ऑर्डर आउट ऑफ इन्फिनिटी, इट्स अवेकनिंग इन टू एक्शन ब्रिंग्स डाउन, सेज द वेदा, द अनरिस्ट्रिक्टेड डाउन पोर ऑफ द रेन ऑफ हेवन। जैसी आप चाहोगे कि मैं बस इस चीज को अपना मेरे पकड़ के रखूं, आपके अंदर आना भी बंद हो जाता है, और जैसे ही आपने आपको वाइड ओपन कर देते हो तो चैनल भी आपका विशाल हो जाता है, डाउन पोर जो आएगी कोई लिमिट नहीं रहेगी। इसीलिए होर्डिंग इज नेवर ए गुड थिंग। इसीलिए किस धन के बारे में भी कि आप, अब मोदी जी तो बाद में आए, लेकिन ये ओरिजिनली कहा गया कि ब्लैक मनी क्या होता है, आपने घर में स्टैक करके रखा है, अब क्या हो रहा है, उसको कोई यूज नहीं कर रहा है, शायद कोई नाग वाग बैठ जाए वहां पे। यू शुड सर्कुलेट, वो बढ़ेगा भी, आप उसको दोगे तो बढ़ेगा। एक्चुअली इवन आप किसी व्यक्ति को दे दोगे तो कम से कम आपका मान बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। और एक्चुअली इन्वेस्ट करोगे तो बढ़ेगा, पर वो नहीं, बड़े प्रसन्न होते हैं ऐसे से लोग जिनके बिस्तर के नीचे दो दो करोड़ की गड्डियां निकली, पता नहीं क्या करते थे, कैसे सोते थे। श्री रामकृष्ण परमहंस, अदर कंट्रास्ट, एक छोटा सा सिक्का मटर के दाने के बराबर भी नहीं, और वो गद्दे रख दो वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, उनको पता हो कि क्या चीज रखी है। इट रिवील्स द ट्रूथ बिहाइंड द स्कैटर्ड एंड इल कंबाइंड सजेशंस ऑफ आवर मेंटेलिटी एंड मेक्स ईच टू फॉल इनटू इट्स प्लेस इन द यूनिटी ऑफ द ट्रूथ बिहाइंड। माँ को लोग आते थे झूठ बोलते थे, माँ किसी को ही नहीं, हे झूठ क्यों बोल रहा है, माँ हंसती थी, बाद में कहती मुझे पता है ये झूठ बोल रहा है, लेकिन उनको पता था कि झूठ के पीछे सच कितना है, क्या है, और उसके अनुसार वो एक्ट करती थी। उसको अभी विकास करना है एक, बट शी वॉज नॉट टेकन अवे बिकॉज वो उसके पीछे जो ट्रूथ है वो जानती थी। इट रिवील्स द विल बिहाइंड ऑल द डेवियस एंड इम्परफेक्टली रेगुलेटेड स्ट्राइविंग्स ऑफ आर मेंटल विल एंड इमोशनल विशेस। तो सुपर माइंड बता देता है कि भैया देखो, प्यार तो तुम भगवान को ही कर रहे हो, खोज तो उस एक बिलवेड को रहे हो, लेकिन तुमको ये समझ नहीं आ रहा, इसलिए तुम एक रूप दूसरे रूप नाना रूपों से गुजर रहे हो, लेकिन एट द एंड यू आर इन लव विद द डिवाइन। तो वो जाने देगा आपको, ये नहीं कि वो रोक करके अचानक आप, क्योंकि यू हैव टू गो थ्रू दैट इवोल्यूशनरी प्रोसेस टिल यू रियलाइज, एंड तब आपको पता चलता है कि सबके अंदर तो वही है. तो ये प्रोसेस है. इट रिवील्स द डिलाइट फॉर विच ईच ऑफ आवर सेंसेशंस एंड इमोशंस इज ग्रोपिंग एंड फ्रॉम विच दे फॉल बैक इन मूवमेंट्स ऑफ पार्शली ग्रास्प्ड सेटिस्फैक्शन और ऑफ डिससेटिस्फैक्शन पेन ग्रीफ और इनडिफरेंस. शेरविंद यहां तक कहते हैं कि पेन को भी तुम आनंद में कन्वर्ट कर सकते हो. तो फेमस पोयम है मेडिटेशंस ऑफ मांडव्य, जिसमें वो स्कॉर्पियन स्टिंग जो हुआ था उनको बिच्छू ने काटा था, तो बिच्छू को वो एक्सटेसी का अनुभव करते हैं कि ये तो मेरे प्रियतम ने चुटकी ली है. अब सोचिए वही इंटेंसिटी, आपका कोई बहुत प्रिय चुटकी ले तो आपके आह भी निकलेगी, उफ भी, तो बड़ी प्यारी सी होगी. और अगर बिच्छू है, जैसे देखें बिच्छू है, तो यही तो डिफरेंस है उस एकत्व में और इस अज्ञान की अवस्था में, उसमें सब कुछ आनंद होता है. Thus it harmonizes for us all the oppositions, divisions, contrarieties of existence and shows us in them the one and the infinite. Uplifted into this supramental light, pain and pleasure and indifference begin to be converted into joy of the one self-existent delight. Har cheez ka apna anand hai. Tab aadmi oh mar gaya dar raha hai nahi. आपकी तलवार है, आपने किनारे रख दी, मैं तो सतत आपके साथ हूं, यही बस उसका जॉय रहता है. स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, सक्सेस एंड फेलियर टर्न इनटू पावर्स ऑफ द वन सेल्फ इफेक्टिव फोर्स एंड विल. ट्रूथ एंड एरर, नॉलेज एंड इग्नोरेंस चेंज इनटू लाइट ऑफ द वन इनफिनिट सेल्फ अवेयरनेस एंड यूनिवर्सल नॉलेज. किसके अंदर? जो इस प्रकार से इस योग पे चलते हुए इंटीग्रल नॉलेज की तरफ जाते हैं और उनके चेतना के अंदर मेंटल कॉन्शियसनेस से ड्राइव होने की जगह सुप्रामेंटल चेतना उनको ड्राइव करने लगती है. अब ये नहीं कि मेंटल कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है, जो हम पढ़ रहे हैं वो अब ऑपरेटिंग सिस्टम बदल जाता है. अंत में it enables us to unite our will with his, to realize his will in the energies of all existences and to perceive the fulfillment of these energies of others as part of our own universal self-fulfillment. Thus it removes the reality of strife and division and opposition and leaves only their appearances. Appearance means kabhi kabhi yuddh ki avashyakta padti hai na, lekin usme ghrana nahi hai, द्वेष नहीं है, चुकुप्सा नहीं है, श्रिंकिंग नहीं है. यदि कोई चीज युद्ध के मार्ग से जाएगी तो जाएगी, लेकिन वो बाहर में अपीयरेंस में स्ट्राइफ है, अंदर में वो एकत्व है. और सबसे अच्छी चीज जो इसके साथ होती है वो अंत में बताते हैं. वी प्रोसीड इन अवर वर्क्स विद इक्वालिटी विदाउट बॉन्डेज टू वर्क्स एंड द रिजल्ट्स इन यूनिसन विद द हाइएस्ट इन यूनिसन विद द यूनिवर्सल free from separate responsibility for our acts and therefore unaffected by their reactions. So gayi karmic law khatam. Karmic law tabhi tak operate karti hai jab tak ego hoti hai. Doer ka sense hai to karmic law. Doer ka sense chala gaya to no karmic law. That's as simple as that. To doer ka sense jane ka sabse uttam tarika to jo Gita mein hai ki aham tvas सर्वधर्मान परित्यजा मामेकम शरणम रजा. सरेंडर से क्या, जैसे जैसे ईगो जिस भी तरह से, इवन अगर ज्ञान के माध्यम से होनी हो, कर्म के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, जैसे ही डुअर सेंस चली गई, ईगो चली गई, तो कार्मिक लॉ आप बंधन. इट्स नॉट मैजिक, इट इज सिंपल, इट्स लॉजिकल. दस बाय द इंटीग्रल नॉलेज वी यूनिफाई ऑल थिंग्स इन द वन. केवल सेंटेंस कितना अद्भुत. वी टेक अप ऑल द कॉर्ड्स ऑफ द यूनिवर्सल म्यूजिक स्ट्रेन्स स्वीट और डिस्कॉर्डेंट ल्यूमिनस इन देयर सजेशन और ऑब्सक्योर पावरफुल और फेंट हर्ड और सप्रेस्ड एंड फाइंड देम ऑल चेंज्ड एंड रिकनसाइल्ड इन द इनडिविजिबल हार्मनी ऑफ सच्चिदानंद. अभी लगता है कि ये डिस्कॉर्डेंट नोट्स हैं, फिर आप उसको एक लार्जर हार्प ऑर्केस्ट्रा के रूप में अगर देखेंगे, तो ये नहीं कि आपको ये बंद करना है कि भाई मैं तो अकेला अपना हारमोनियम बजाऊंगा, मजा भी फिर सीमित आएगा, लेकिन ये सारे अलग अलग नोट्स को मिल करके भगवान तो यही प्रयास करेगा, ये तो भगवान के लिए है। आप यही जो बात हो रही थी आज, चूंकि लोग बात कर रहे थे गाजा की, भाई जब तक आपके मन में ये भाव है कि जूस के बिना मरे हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, यही लिखा है किताब में, जूस जब तक नहीं मरेंगे कयामत का दिन नहीं आएगा, तो आप ये शांति कैसे लाओगे? वो तो फिर उठेगा सांप, नाग नहीं कहूंगा, नाग तो इवोल्यूशन के देवता है। और जब ये आ जाती है अवस्था, द नॉलेज ब्रिंग्स ऑल्सो द पावर एंड द जॉय। अब अंदर में परिवर्तन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है कि अंदर में हृदय परिवर्तन आ जाए, डोर खुला रखना चाहिए। हाउ शेल ही बी डिल्यूडेड वेन शेल ही हैव सोरो हु सीज एवरीवेयर द वननेस, तत्र को मोह का शोका एकत्वम अनुपश्यत। ये अगेन ये एकत्व सरफेस का एकत्व नहीं है, लेट्स मीट टुगेदर एंड हैव चिकन टुगेदर, नहीं, इट इज द डीपर वननेस जिसकी दृष्टि से आप सारी सृष्टि की मल्टीप्लिसिटी, बहुतता को, विविधता को देखते हो और हरेक को समझते हो और फिर उसमें एक्ट करते हो। जय मां।